जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है अब्रानियों 4:16 आयत के मुताबिक कि बड़ी दलेरी के साथ खुदा के फजल के सामने बड़े एतमाद के साथ यकीन के साथ खुदा के तख्त के सामने हाजिर हों, क्योंकि वो हमारी मदद कर सकता है। और आज हम सब अपनी जिंदगी में तरह तरह के तूफान, मुश्किलात, परेशानियां देख सकते हैं, मुसीबतें देख सकते हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, लेकिन ये मुसीबतें कभी भी हमारी जिंदगी में रुकावट का बायस ना बनने पाए कि हम यीशु मसीह के पास ना जाएं। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद कलामे खुदा को सुनना सीखना शुरू करेंगे। तो इससे पहले कि हम कलाम को सीखना शुरू करें, मैं चाहता हूं ये 2-4 बोल आपके साथ खुदा की प्रस्तुति में पेश किए जाएं। और ये गीत आप बाइबल मुकद्दस में इस कहानी में देख सकते हैं, जब पतरस पानी पर चल रहा था, जब पहले उसने यीशु मसीह को देखा पानी पर चलते हुए। यीशु मसीह को देख पतरस ने क्या किया? पानी पर चलना शुरू किया। और हम देखते हैं जब तूफान कसरत से था तो उसने अपनी नजरें यीशु मसीह से हटा ली तो क्या हुआ? वो डूबना शुरू हो गया। इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत दफा मुश्किलात, परेशानियां, तूफान आते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह को तकते रहने की जरूरत है, यीशु मसीह पर नजरें जमाए रहने की जरूरत है, क्योंकि वो ही हमारी जिंदगी की मुश्किल घड़ियों में हमें संभालता है। इसलिए गाने वाले ने ये गीत गाया और कहता है कि गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी, आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। हम सब ईमानदारों की यही सदा, यही दुआ, यही पुकार होनी चाहिए जब हम मुश्किलात में घिर जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यशाया नबी के मुताबिक कहती है कि उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, जैसे इस शायर ने कहा, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कान तेरा भारा नहीं जो ना दुआ सुनेगा, हाथ अपना यसू वदा, हाथ अपना यसू वदा, मैनू लोड़ तेरी, आ यसू नासरी, मैनू लोड़ तेरी। आए हम सब खुदा के हजूर झुके और अपने आप को खुदा के हजूर पेश करें और अपनी मुश्किलात को, परेशानियों को, तकलीफों को, बीमारियों को, जो भी मसला है, खुदावन से कहेंगे कि हमें तेरी जरूरत है, क्योंकि वो हमारी रूहों की शिफा है, वो हमारी बेतमनानी में इत्मनान है, वो हमारी कमियों कमजोरियों में हमारा जोर है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते का नूर बन जाता है। सो आए उसके हजूर झुकें और खुदा पाक रू से कहेंगे कि आज जो कुछ हम सीखें हम सब के लिए भलाई और कुदरत और मोजजात का वसीला ठहरे, क्योंकि उसका कलाम जिंदा और पाक और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है जो हमारी रूहों की तरबियत और नसीहत के लिए दिया गया है। खुदा बाप, आज इस वक्त इस घड़ी खुदावन खुदा, हम सब तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं, और खुदावन जैसे तूने बियाबान में उन बनी इसराइल कौम के लिए आसमान से मन बरसाया, इसी तरह खुदा बाप इस वक्त अब हमारे लिए अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रूहानी रोटी हमें मुहैया कर, ताकि हम बरकत पाएं, सैर हों और इस जमीन पर जाने के हम क्यों मौजूद हैं, क्यों हमारी मौजूदगी इस जमीन पर है, किस मकसद के लिए हम जमीन पर हैं। सो खुदा बाप हम सबको छू बड़ी बरकत दे, सुनने वालों को उनकी समझों को रोशन कर। खुदा पाक रू यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खात उसकी आयत बा आयत स्टडी यानी के मतालिया कर रहे हैं। सो मेरे साथ निकालें पहला बाप उसकी 13वीं आयत। इस आयत में बहुत गहरी सच्चाइयां पाई जाती हैं, लेकिन हम आज चंद एक बातें इसमें से सीखेंगे। और आप सब जानते हैं कि पालूस रसूल ने जब ये खत लिखा तो वो जेल की हालत में था, वो कैद की हालत में था, और उसने ये खत इफिसस के ईमानदारों को और दूसरी कलीसियाओं में पढ़े जाने वाले ईमानदारों को लिखा। और हम भी इस खत में से सीख सकते हैं कि हमारी हालत, हमारा मकाम, हमारा दर्जा खुदावन यीशु मसीह में क्या है। तो आज हम 13वीं आयत को शुरू करेंगे। 13वीं और 14वीं आयत में यहां पर हम रूहुल कुद्दस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमने तीसरी आयत से छठी आयत तक सीखा कि खुदा बाप हमारे लिए क्या कुछ करता है यीशु मसीह में। और फिर हमने 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत में सीखा कि यीशु मसीह में हमें क्या कुछ हासिल है। और आज हम शुरू करेंगे इस बाब का तीसरा हिस्सा के रूहुल कुद्दस हमारे लिए क्या करता है, रूहुल कुद्दस किस तरह हमारे लिए वो बयाना ठहरा है हमारी मेराज के लिए, हमारी तरक्की के लिए। सो 13वीं आयत को आपके लिए पढ़ूंगा, गौर से सुने। जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं वो निकालें। पालूस कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोहदे रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत और मकलसी के लिए हमारी मेराज का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आज हम 13वीं आयत में से सीखेंगे सबसे पहली बात के उसी में। जब हम इस लफ्ज को उसी में देखते हैं तो इसका तल्लक खुदावंद यीशु मसीह में है, और इससे हमें पता चलता है कि उसी में बहुत दफा बाइबल में मुकद्दस में जब लफ्ज हम उसी में देखते हैं तो इसे मुख्तलिफ तरीके से जान सकते हैं। लफ्ज जैसे उसी में, उसमें, जिसमें, सो ये अल्फाज हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम इफ़सियों 3 बाप उसकी 21वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है। 2 बाप उसकी 21वीं आयत को देखें मेरे साथ। पालूस यहां कहता है, उसी में हर एक अमारत मिलकर खुदा में एक मुकद्दस पाक मकदस बनता जाता है। उसी में, किस में? खुदावंद यीशु मसीह में। इसी तरह फिर हम तीसरे बाब की 12वीं आयत को देखते हैं। यहां पर लफ्ज पालूस इस्तेमाल करता है, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी और भरोसे के साथ रसाई। यहां पर वो कहता है कि खुदा तक पहुंचने के लिए यीशु मसीह में, यहां पर लफ्ज जिसका इस्तेमाल हुआ। तो क्यों जरूरत महसूस की इस लफ्ज को बताने की? क्योंकि यीशु मसीह में हमें क्या कुछ हासिल है। और इफ्सियों के पहले तीन बाप में पालूस रसूल इसी बात को बार बार उन गहरे भेदों को सिखाता है कि ईमानदारों को यीशु मसीह में उसमें हमको क्या कुछ हासिल है। और यीशु मसीह में हमें हर तरह की हिकमत, यीशु मसीह में हर तरह के खजाने, आसमानी खजाने हासिल है। तो इसके लिए हमें बहुत से हवाला जात मिलते हैं, जैसे कुलसियों एक बाप उसकी 14 आयत, अगर आप लिखना चाहते हैं कुलसियों दो बाप उसकी 3 आयत, फिलिपियों तीन, इफ्सियों तीन बाप उसकी 12 आयत, इफ्सियों दो बाप उसकी 21वीं और 22वीं आयत। इसमें लफ्ज उसमें, जिसमें, उसी में, हमको, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और अगली बात क्या कहता है पौलुस रसूल 13वीं आयत में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। आज बहुत सी हम बातें सीखेंगे, खासकर ऐसी बातें जो हमें हैरान कर देंगी। और यहां पर पालूस उसूल सिखाता है कि जब हमने कलामे हक को सुना जो हमारी निजात की खुशखबरी। बहुत दफा कलीसियाओं में ये बात पाई जाती है, जब कोई बच्चा या बेटी पैदा होती है तो पादरी साहबान उस बेटी बेटे को मखसूस करते हैं, और ये मखसूसियत निजात की मखसूसियत नहीं है, बल्कि मखसूस किया जाता है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि उस बेटी उस बेटे को मसीह के बारे में सिखाए, ताकि एक दिन आए कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए और नजात हासिल करे। क्योंकि बा मुताबक बाइबल मुकद्दस ये बात आपको हैरान कर देगी, मसीही कोई भी पैदाइशी तौर पर मसीही पैदा नहीं होता, कोई भी पैदाइशी तौर पर मसीही पैदा नहीं होता, मसीही बनने के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना जरूरी है। इसलिए अगर कोई पादरी साहब है तो उसका बेटा मसीही नहीं है जब तक वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता। मिसाल के तौर पर यीशु मसीह के अपने बहन भाई थे, और उन्होंने जब यीशु मसीह पर यकीन किया तो तब वो मसीही कहलाए। इसलिए मसीही बनने से पहले पालूस रसूल सिखाता है, तुम पर जब तुमने कलामे हक को सुना। सो कलाम की खुशखबरी सुनना जरूर है, कलाम की खुशखबरी देना जरूर है। और आप में से अगर आप एक दूसरे से पूछें तो आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि आपने कब या किस तरह या कहां पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। हो सकता है 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई ना कोई आया जिसने आपको निजात की खुशखबरी दी। क्यों ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हम मसीही पैदा नहीं होते, बल्कि मसीही बनने के लिए हमें फैसला करना होता है कि हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे या यीशु मसीह का इनकार करेंगे। जैसे बहुत से दूसरे अदयान में, दूसरे लोगों में यह बात पाई जाती है कि अगर कोई कि अगर कोई उस ईमान में पैदा हुआ तो वो उसमें ईमान से तलक रखता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, खुदा से अलहदा है, کوئی بھی بشر جب اس زمین پر انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا سے علیحدہ پیدا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے روحانی طور پر مردہ۔ سو پالوس کہتا ہے تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا، سو کسی نہ کسی کو کلام سنانے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کو منادی کرنے کے لیے جانے کی ضرورت ہے، اور کوئی نہ کوئی اس نیو کرسچن کلونی میں منادی کرنے کے لیے آیا، ہو سکتا ہے 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ کے درمیان کافی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح یسوع مسیح کو قبول کیا، کب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور یہ حقیقت ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ مسیحی ہے، نہیں، اسے خود ایمان رکھنا ہوگا اپنی زندگی میں، 20 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، اور ہو سکتا ہے 16 سال کی عمر میں۔ مجھے یاد ہے جب میرے چھوٹے بھائی کیسر کے گھر یوحنا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسے مخصوص کیا جائے، پھر میں نے ان کو سکھایا کہ مخصوصیت کیا ہے، اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دی جائے، تاکہ زندگی میں یہ خود فیصلہ کرنے والا بنے کہ نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ اور بائبل مقدس میں بہت سی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں، جیسے یونا نبی جاتا ہے منادی کرنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اپنی گناہ آلودہ زندگی سے اپنا منہ پھیریں اور یسوع مسیح پر، خدا پر یقین رکھیں۔ متی رسول یہودی تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے بلایا تو پھر وہ مسیح کا شاگرد بنا۔ لوکا طبیب غیر قوم سے تھا، وہ طبیب تھا، وہ یونانی تھا، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں تحقیق کی تو وہ ایمان لایا۔ پالوس رسول نے یسوع مسیح کو دیکھا اور اس پر ایمان لایا تو مسیحی کہلایا۔ اور ہمیں کتنی بھی ہم اناجیل یعنی کہ انجیلوں کو دیکھ سکتے ہیں، پالوس کے تمام خطوں کو دیکھ سکتے ہیں، پالوس کے تمام سفر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گیا اور مسیح کی منادی کی اور ان تک پیغام پہنچایا۔ اس لیے کسی نہ کسی نے آپ کو کلام سنایا تو آپ مسیح کے پاس آئے، آپ نے مسیح کو قبول کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، رومیو 10:10، کیوں ضرورت ہے منادی کرنے کی، کیوں ضرورت ہے اس بات کی اہمیت کو جاننے کی کہ کسی نہ کسی کو جا کر منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ رومیو 10:14 اس کی 14 آیت، یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر کیوں کر ایمان لائے، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں۔ پالوس رسول سادہ طور پر کہتا ہے کہ جس کے بارے میں سنا نہیں اس پر کوئی کس طرح ایمان لا سکتا ہے، جس پر کسی نے ایمان نہیں لایا وہ کس طرح اس پر اس انعام سے دعا کر سکتا ہے۔ اس لیے منادی کرنے والے کے بغیر، پیغام سنانے والے کے بغیر کوئی کس طرح جانے گا۔ سو پالوس رسول گیا دنیا کی حدوں تک، افسیوں کا افسس کی کلیسیا وجود میں آئی، رومیو کی کلیسیا وجود میں آئی، ایمال کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں وجود میں آئی، और जब पतरस ने बड़ी दलेरी से ईदे पैंती कोस के दिन कलाम सुनाया तो 3,000 लोग यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनकर कलीसिया में शामिल हो गए। इसलिए आप तक ये पैगाम वाजिया तौर पर पहुंचाना चाहता हूं कि जो कोई खा हम मसीही खानदान में पैदा हुए हैं लेकिन जरूरत है कि अपने बच्चों पर खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाएं। आपको कहानी याद होगी कि यीशु मसीह के पास निकुदीमस जो यहूदी था, यहूदी रहनुमा था, तमाम शरीयत का इलम रखता था लेकिन वो नजात से वाकिफ ना था। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए आपको अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को इस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। और वो कभी भी और तब तक वो यकीन नहीं करेंगे जब तक पैगाम सुनाया नहीं जाएगा। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि कोई किस तरह ईमान ला सकता है, कोई किस तरह दुआ कर सकता है जब तक मनादी ना की जाए। और 15वीं आयत में कहता है और जब तक वो भेजा ना जाए मनादी क्यों कर करे। चुनाचे लिखा है क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी का मतलब अंजील और अंजील का मतलब यीशु मसीह की खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि खुदा के साथ आपका रिश्ता बहाल हो सकता है। खुदा के साथ सुलह करने का एक ही वसीला है, खुदा तक पहुंचने का एक ही वसीला है जिसे यीशु मसीह ने कहा है राह और हक और जिंदगी मैं हूं। बाइबल मुकद्दस में आप तमाम लोगों को देख सकते हैं जिनका यही पैगाम है। यूहन्ना ने अपनी खिदमत शुरू की तो उसने क्या कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक है, खुशखबरी का पैगाम सुनो और तौबा करो। यूहन्ना की यही गवाही है, तमाम रसूलों की यही गवाही है। और यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले क्या हुक्म दिया था, जाओ और सब कौमों को जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाओ। इसलिए खुदा की ख्वाहिश है कि हर एक निजात पाए। किसी ना किसी को कलाम सुनाने की जरूरत है, अंजील की बातें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि इसी मकसद के लिए हम इस जमीन पर हैं। जिस तरह आपने किसी ना किसी से कलाम सुना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और सलीब पर मुआ हमारे गुनाहों के लिए, इसी तरह दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। और सबसे खास कर ये बात अपने बच्चों को ये बात सिखाने की जरूरत है कि बेटी बेटा क्या तू यीशु मसीह को जानती है, यीशु मसीह पर ईमान रखती है, क्योंकि ये आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है, बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो कोई यीशु पर ईमान रखेगा वो निजात पाएगा और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता उसके लिए हमेशा की जहन्नम की आग क्या है दस्तियाब है। और इसमें खुदा की गलती नहीं बल्कि जो कोई उसका इनकार करेगा वो दोजक में अपने लिए जगह खरीदेगा। तो इसलिए हमारे पास ये मौका है, ये जिंदगी है कि खुशखबरी का पैगाम तमाम दुनिया तक पहुंचाएं। क्योंकि पालूस कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सो मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें, चंद एक हवाला जात देखें कि किस तरह जिन लोगों ने कलाम को सुना उनकी जिंदगी बदली। कुलसियों पहला बाप उसकी मेरे साथ देखें 4 आयत। यहां पर पालूस रसूल कुलसे के ईमानदारों को कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यसु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। 5वीं आयत, उस उम्मीद की हुई चीजों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई हैं, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम में सुन चुके हो। कुलसियों की कलीसिया किस तरह वजूद में आई? पालूस रसूल ने जाकर उनको कलाम सुनाया, पालूस रसूल ने जाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बताया, तो तब वो मसीह का बदन बने। मेरे साथ एक और हवाला देखें, थसलीकियों पहला थसलीकियों 2 बाप उसकी 13 आयत। यहां पर भी खुदावंद का बंदा पालूस रसूल सिखाता है, 2 बाप उसकी 13 आयत। पहला थसलीकियों 2 बाप उसकी 13 आयत। इस वास्ते हम बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम नहीं समझा, आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसे हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हैं तस्वीर भी करता है। पालूस रसूल ने जाकर उनको कलाम सुनाया और कहता है कि मैं बिला नागा शुक्र करता हूं खुदा का कि तुमने खुदा का पैगाम मेरी मार्फत मेरे वसीला से सुना, जो तुम्हें अब काम करता है, जो तुम्हें मसीह का बदन बनाता है। और इस जमीन पर जिस तरह पालूस की जिम्मेदारी थी कि अंजील के इस पैगाम को दूसरों तक लेकर जाए, आप सब की भी ये जिम्मेदारी है। आपका इस जमीन पर मौजूद होना, आपका इस जमीन पर सांस लेना, आपकी जिंदगी में जो सांसें चल रही हैं, आज का दिन जो खुदा ने हमें दिया है, उसके पीछे खुदा का मकसद क्या है? कि हम उसके कलाम को सुने और इस खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अपने घर में हमें अपने बेटे और बेटियों से बातचीत करने की जरूरत है, अपने पड़ोसियों से बात करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत दफा हम में ये बात पाई जाती है कि हम कहते हैं कि हाँ मेरा नाम साजिद मसीह है, मेरा नाम अफजाल मसीह है, लेकिन हम बहुत दफा बुत परस्ती में, बहुत दफा दूसरी बातों में शामिल होते हैं। इसलिए इस बात को वाजिया करने की जरूरत है अपने बेटों और बेटियों पर, अपने पड़ोसियों पर। हरगिज इस फरेब में, इस झूठ में हम ना रहें कि मैं मसीही हूं सो मेरा बेटा मेरी बेटी मसीही है। कलाम की खुशखबरी उन तक पहुंचाने की जरूरत है। बेशक ये बात आपके लिए नहीं है, लेकिन यही कलाम की सच्चाई है। पालूस कहता है कि जब तुमने उस कलाम को, कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है। इब्राहिम, बाप इब्राहिम जिसे ईमानदारों का बाप कहते हैं, वो शुरू ही से ईमानदार पैदा नहीं हुआ। जब हम उसकी जिंदगी को देखते हैं तो उसका बाप तारा क्या था? उस समंदर पर बुत परस्ती करता था, लेकिन खुदा ने उसे बुलाया और कहा, और इब्राहिम ने जब खुदा पर यकीन किया तो वो क्या ठहरा? ईमानदार ठहरा। पालूस रसूल इसके बारे में बात करता है कि ईमान ही से इब्राहिम रास्तबाज ठहरा। ईमान ही से सो जैसे पालूस की जिम्मेदारी थी, हम सब की जिम्मेदारी है। सो मैं इस हवाला को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसे खत्म करें, इस हिस्सा को, और आगे चलकर हम और ज्यादा सीखेंगे। रोमियो पहला बाप उसकी 14वीं आयत। यहां पर पालूस रसूल कहता है, मैं गैर यूनानियों दनाओं और गैर दनाओं का कर्जदार हूं। किस लिए? पालूस ने उनका कर्जा नहीं चुकाना था, पालूस ने उनको कोई पैसे उनके नहीं अदा करने थे। पालूस रसूल यहां पर रूहानी जिम्मेदारी की बात कर रहा है, कहता है कि मैं रूहानी तौर पर इस बात का कर्जदार हूं, जिम्मेदार हूं, जो पैगाम मुझे मिला है दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और 15वीं आयत में वो कहता है, मैं रूमियों को खुशखबरी सुनाने के लिए क्या कहता हूं, कहता है कि जिम्मेदार हूं। और इसीलिए वो 16वीं आयत में कहता है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। अंजील का मतलब है खुशखबरी, खुदावंद का पैगाम। कहता है कि मैं अंजील की मनादी करने से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदियों फिर यूनानियों के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। मनादी, अंजील का पैगाम सबसे पहले किनको सुनाया गया? यहूदियों को। बहुतों ने कबूल किया, लेकिन बहुतों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया। हम इसे देख सकते हैं कि यीशु मसीह को 2 दिन पहले वो बादशाह कह रहे हैं, उसे होशियाना कहकर वेलकम कर रहे हैं, उसके खुशामदीद कर रहे हैं, और 2 दिन बाद वही लोगों की बड़ी भीड़ कहती है कि उसे मसलूब करो, क्योंकि ये हमारा निजात दहिंदा नहीं है, ये झूठा है, ये बादशाह नहीं हो सकता। सो बहुतों ने कबूल किया। सो अंजील का पैगाम पहले यहूदियों तक, उसके बाद यूनानियों, यानी कि हम सब तक पहुंचाया गया। सो हम सब अंजील के कर्जदार हैं। ये नहीं कि हमने निजात पाली है और दूसरों तक नहीं पहुंचाना, नहीं, हमने निजात पाई है ताकि दूसरों को अंजील का पैगाम सुनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसी जगह मालूम कर ले जहां पर खुशी, इत्मीनान और तसल्ली और हर तरह की खुशहाली हो, क्या आप उस जगह के बारे में चुप रहेंगे कि अपने रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को ना बताएं? अगर आप किसी से मोहब्बत रखते हैं तो आप जरूर बताएंगे कि वहां पर एक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा खुशी और इत्मीनान है। लेकिन अगर आप खुद गर्ज हैं तो आप हरगिज नहीं बताएंगे। आप कहेंगे कि ठीक है, मुझे वो जगह मिल गई है, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगी। सो पालूस रसूल कहता है कि मैं खुद गर्ज नहीं, और ना ही शर्माता हूं, ना ही डरता हूं, ना ही झिझकचाता हूं। इसलिए वो कहता है कि अंजील की खुशखबरी सुनाने से मैं बाज नहीं रहता, पहले यहूदियों को फिर यूनानियों को। और 17वीं आयत पर हम खत्म करेंगे, इस वास्ते के उसमें खुदा की रासबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसे लिखा है कि रासबाज ईमान ही से जीता रहेगा। तो इससे पहले खत्म करें, आज सवाल है आपसे, क्या आप अंजील की खुशखबरी से शर्माते हैं? क्या आप अंजील की खुशखबरी से शर्माते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का हुक्म है कि हर रोज मेरा इकरार करो, हर रोज इस पैगाम के बारे में दूसरों को बताओ। सो इससे पहले कि हम यहां से फारग हों, घरों को जाएं, आपसे दरख्वास्त है, अपने बच्चों के साथ बैठकर दुआ करें। अगर पहले कभी आपने यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, तो बाइबल मुकद्दस में बड़ा सादा सा तरीका है, रोमियो 10 बाब में ये बात बड़ी वाजिया है कि अगर कोई अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा, क्योंकि रासबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए अकरार मुंह से किया जाता है, क्योंकि किताबे मुकद्दस ये कहती है जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। सो आए हम खुदा के हुजूर झुके। अगर आपने पहले कभी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आप मुझसे बात कर सकते हैं, भाई ताहर से बात कर सकते हैं, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं कि बेटी बेटा क्या तू यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान रखता है, क्या तू इस बात से वाकिफ है कि अगर तू यीशु पर ईमान रखेगा तो हमेशा की जिंदगी का मालिक है। आए हम खुदा के हुजूर झुके। खुदा बाप, आज इस कड़वी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खासकर खुदावन मेरी दुआ है कि हम इस सच्चाई को, इस खुशखबरी के पैगाम को कबूल करने के साथ साथ दूसरों तक लेकर जाएं। हमारे सख्त दिलों को खुदावन मोम कर, हमारी बंद दिलों की आंखों को खोल, हमें कुव्वत और ताकत दे, जैसे इब्तदाई कलीसिया ने मुसीबत दुख उठाकर जब वो सताए गए और पहली बार वो मसीही कहलाए अंताकिया में, इसी तरह खुदा खुदा हमारी जिंदगी में तेरा पैगाम, तेरा कलाम पूरा हो और बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं। तो बाकी की सारी इबादत में हम सब के साथ हो और हर तरह की कमी कमजोरी को दूर कर, यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।